اللہ کے خاص بندے۔
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम अल्लाह के खास बंदे की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
मैं हूं अहमद अब्बास
और मरियम मेहर दादी, हम दोनों का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। श्रोताओं, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि बनी उमैया से बनी अब्बास तक सत्ता कैसे स्थानांतरित हुई थी। हमने ये भी कहा था कि बनी अब्बास के एक गुट ने ये नारा देकर युद्ध किया था कि हमने आले मोहम्मद की खुशी और सत्ता उनके हवाले करने के लिए आंदोलन किया है, परंतु इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने न तो इस आंदोलन में भाग लिया और न ही उसमें कुछ भूमिका निभाई।
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया क्योंकि उन्हें गहरी राजनीतिक एवं धार्मिक जानकारी के कारण पूरा विश्वास था कि इस युद्ध से बनी अब्बास का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति के अलावा कुछ और नहीं है, और इसी वजह से इमाम ने किसी भी तरह इस युद्ध व आंदोलन में भाग नहीं लिया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बनी अब्बास के युद्ध में जो भाग नहीं लिया तो कुछ ने प्रश्न किया कि आखिर इमाम ने क्यों उस अवसर से लाभ नहीं उठाया और क्यों उस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ बिंदुओं को बयान करना जरूरी है।
शायद इमाम के इस कार्य का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि पैगंबर इस्लाम के स्वर्गवास के बाद लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़कर दूसरों को खलीफा मान लिया, जबकि पैगंबर इस्लाम महान ईश्वर के आदेश से अपने जीवन के अंतिम हज में और 120,000 हाजियों की उपस्थिति में मैदान-ए-कदीर में इस बात की घोषणा कर चुके थे कि मेरे बाद अली ही मेरे उत्तराधिकारी हैं।
लोगों ने गदीर के मैदान में पैगंबर इस्लाम की मौजूदगी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के प्रति जो बैत की थी उसे तोड़ दिया और लोग सकीफ़ा की बुनियाद रखने वालों से जा मिले थे। यही नहीं, लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सामान्य संबंध भी तोड़ लिए थे, यहाँ तक कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम 25 वर्षों तक मौन धारण किए रहे। परंतु जब लोगों ने बहुत अधिक आग्रह किया और उनसे खिलाफत स्वीकार करने के लिए कहा तब उन्होंने खिलाफत स्वीकार की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत लगभग 5 वर्ष तक चली। इस दौरान जमल, सिफीन और नहरवान नामक 3 युद्ध उन पर थोप दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें शहीद कर दिया गया।
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बनी अब्बास के युद्ध में जो भाग नहीं लिया उसका एक अन्य कारण इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जीवन का कटु अनुभव था। कूफा के लोगों ने आरंभ में मुआविया से युद्ध करने की तत्परता की घोषणा की थी, परंतु थोड़े ही समय में वे अपनी तत्परता से पीछे हट गए। उन लोगों का कहना था कि वे मुआविया की सरकार का अंत करके खिलाफत को समय के इमाम के हवाले कर देंगे, परंतु वे लोग न केवल अपने वचन के प्रति वचनबद्ध नहीं रहे बल्कि इमाम के खिलाफ एकजुट हो गए और उमावी सरकार को और मजबूती प्रदान कर दी। इन्हीं कटु अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बनी अब्बास द्वारा किए गए युद्ध में भाग नहीं लिया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक अनुयायी के साथ जो वार्ता की थी उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
रवायत में है कि सरीर सैरफी नामक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक अनुयायी उनकी सेवा में हाजिर हुआ और इमाम से उसने कहा, क्यों आप आंदोलन नहीं करते? उसके जवाब में इमाम ने फरमाया, किस आधार पर तुम ये बात कह रहे हो? उसने कहा, आपके काफ़ी शिया हैं। तो इमाम ने फरमाया, तुम्हारे विचार में वे कितने होंगे? उसने कहा, 1,00,000। तो इमाम ने आश्चर्य से पूछा, 1,00,000? तो उसने कहा कि जी हाँ, शायद 2,00,000। फिर इमाम ने आश्चर्य से कहा, 2,00,000? उसके बाद इमाम ने कुछ नहीं कहा और पैदल चलते हुए मदीना से बाहर निकल गए, यहाँ तक कि भेड़ों के एक झुंड तक पहुँच गए। इमाम ने जब भेड़ों के झुंड को देखा तो एक आह भरी और कहा, काश इन भेड़ों की संख्या के बराबर ही हमारे पास वफादार साथी और सच्चे शिया होते तो हम फौरन आंदोलन करते।
ان سب کے باوجود امام صادق علیہ السلام اپنے پہلے والے اماموں کی بھانتی اپنے سمے کے اتیاچاری اور اس سرکار کے رویے پر چپ نہیں رہ سکتے تھے جس نے پیغمبر اسلام کی خلافت کو ہڑپ لیا تھا۔ اتھا سب سے پہلے امام نے اپنے سمے کے عباسی سرکار کی ویدتا کا انکار کیا۔ امام فرماتے تھے، ہر وہ ویکتی جو اتیاچاری نیایدھیش یا اتیاچاری شاسک کے پاس جائے اور ان سے فیصلہ کرنے کے لیے کہے تو وہ قرآن کی اس آیت میں شامل ہوگا جس میں ایشور کہتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے والے پیغمبروں پر نازل ہوا ہے اس پر وہ ایمان لائے ہیں اور وہ اتیاچاری سرکاروں سے فیصلہ چاہتے ہیں، جبکہ انہیں آدیش دیا جا چکا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ دیں۔ پوتر قرآن کی اسی آیت میں مہتوپورن بندو کی اور دھیان دیا جا سکتا ہے جس میں مہان ایشور کہتا ہے، یہ شیطان ہے جو انہیں گمراہ کرنا اور سیدھے راستے سے دور لے جانا چاہتا ہے۔
امام صادق علیہ السلام اپنے سچے انویائیوں سے کہتے تھے کہ اتیاچاری اور دھرم ویرودھی سرکار سے لین دین اور سہیوگ کرنے سے دوری برتیں۔ امام صادق علیہ السلام آوشکتا رکھنے والے شیعوں کی سہایتا کے لیے خمس ارتھات وشیش دھارمک راشی سوئم لیتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک انویائی معلا بن حنیش کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سوئم خمس لیتے اور ضرورت کے حساب سے اسے خرچ کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام اسی پرکار متھیاچاری عباسی شاسکوں کے خلاف ہر اوسر سے لابھ اٹھاتے تھے تاکہ ان کی اور شیعوں کو جانے سے روک سکیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک دن اپنے ششیوں کے ایک گٹ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ میں اتیاچاریوں کے ہت میں کسی بھی سمسیا کا نہ تو سمادھان کرنا چاہتا ہوں اور نہ تو ان کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایشور کی سوگند، میں ان کے ہت میں کاغذ پر قلم نہیں چلانا چاہتا کیونکہ اتیاچاری اور ان کے سہائک پرلے کے دن نرک کی آگ میں ہوں گے۔
امام صادق علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے اتیاچاریوں سے سنگھرش سب سے ادھک دھارمک نیتاؤں و مارگ درشکوں کی ذمہ داری ہے۔ فرماتے تھے کہ دھرم شاستری پیغمبر کے اتراधिकारी ہیں، اگر آپ نے ایسے دھرم شاستری کو دیکھا جو اتیاچاریوں کی اور رجحان رکھتا ہے تو اس پر وشواس نہ کرو اور اسے سماج کی نظروں سے گرا دو۔
ایک دن ایک ویکتی امام صادق علیہ السلام کی سیوا میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، یہودی اپنے دھرم گروؤں کا انوسرن کرنے کے کارن ایشوریہ بھرتسنا و پھٹکار کا پاتر بنے، اور اگر مسلمان بھی یہی کاریہ کریں تو ان میں اور مسلمانوں میں کیا انتر ہے؟ امام نے فرمایا، یہودی اپنے دھرم گروؤں کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور حرام کا کھا رہے ہیں اور گھوس لے رہے ہیں اور ایشور کے آدیشوں کو بدل رہے ہیں۔ اگر ان کی کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس پر اتیاچار کرتے اور اس کے ادھیکاروں کی اندیکھی کر دیتے تھے، اور اگر کسی سے دوستی ہوتی تھی تو اس کا بچاؤ کرتے تھے۔ امام نے اسی طرح اپنی بات کو جاری رکھا اور اس کے بعد کہا، یہودی قوم پوری طرح ان باتوں و وشیشتاؤں کو جاننے کے باوجود اپنے دھرم گروؤں کا اندھا انوسرن کرتی تھی، اسی کارن ایشور نے ان کی بھرتسنا کی ہے۔ امام نے اس کے بعد فرمایا، اگر مسلمان قوم بھی انہی وشیشتاؤں کے دھرم گروؤں کا انوسرن کرے تو وہ بھی ایشوریہ بھرتسنا کے پاتر ہوں گے۔
اس پرکار کی پرستھتی میں سمبھو ہے کہ یہ کوئی سوال کرے کہ تقلید ایک ضروری چیز ہے، ایسے میں اسلامی سماج کا کیا دائتو بنتا ہے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس بات میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ ہر کھیتر کے وشیشجھ کا انوسرن وہ کاریہ ہے جسے بدھی کہتی ہے، پرنتو سوال یہ ہے کہ کیا اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی پرکار کی جانچ پڑتال کے بنا ہر وشیشجھ کا انوسرن کرنا چاہیے، یا جانچ پڑتال کے بعد اس پر بھروسہ کرنا اور اس کا انوسرن کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام انوسرن نہ کرنے یوگیہ دھرم گروؤں کو نکارنے کے بعد ان دھرم گروؤں کا الیکھ کرتے ہیں جن کا انوسرن کرنا چاہیے۔ امام اس پرکار کے دھرم گروؤں کے بارے میں کہتے ہیں، जो धर्म शास्त्रियों में से अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित करे और ईश्वरीय सीमाओं का ध्यान रखे और अपनी आंतरिक इच्छाओं के मुकाबले में ईश्वरीय आदेशों का पालन करे, तो स्थिति में लोगों को चाहिए कि वे उसका अनुसरण करें। उसके बाद अंत में इमाम ने फरमाया, किंतु बहुत थोड़े से धर्मशास्त्री हैं जिनके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में उमवियों और अब्बासियों के मध्य जो लड़ाई हो रही थी, अगर इमाम ने उसमें भाग नहीं लिया तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इमाम के पास वफादार साथियों व अनुयायियों की कमी थी। परंतु समस्त इमामों की जो संयुक्त जीवन शैली थी वो ये थी कि उन्होंने कभी भी खिलाफत पर कब्जा करने वालों के साथ किसी प्रकार की सांठगांठ नहीं की और न ही कभी चुप रहे।
रवायत में है कि मंसूर अब्बासी का शासन काल और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत का काल 10 वर्षों तक एक साथ रहा। अपने शासन काल में मंसूर अब्बासी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के लिए संदेश भेजा कि क्यों आप हमारे दरबार में नहीं आते। उसके जवाब में इमाम ने संदेश भिजवाया कि हम न तो अहले दुनिया हैं जो तुझसे लाभ उठाएं और न तू परलोक का प्रेमी है कि तेरे साथ रहें और परलोक के लिए सामान संचित करें। मंसूर अब्बासी का एक निकटवर्ती कहता है, एक दिन एक मच्छर मंसूर अब्बासी के चेहरे पर बैठ गया तो उसने उसे अपने चेहरे से उड़ा दिया, परंतु वो दोबारा उसके चेहरे पर आकर बैठ गया। फिर उसने उसे अपने चेहरे से हटा दिया, अंततः वो बहुत थक गया। इसी बीच इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच गए। मंसूर ने इमाम से पूछा, ईश्वर ने मच्छर क्यों पैदा किया? इमाम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ताकि ईश्वर मच्छर के जरिए अहंकारियों को अपमानित करे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो स्पष्ट दृष्टिकोण अपना रखा था उसके कारण मंसूर अब्बासी ने दिन प्रतिदिन इमाम के साथ कड़ाई बरती, और चूंकि इमाम का जो व्यवहार था वो मंसूर अब्बासी की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ था, इसलिए उसने दूसरे अत्याचारी शासकों की भांति शियों और अलवी सदस्यों की हत्या का आदेश दिया। वो अपने जासूसों के माध्यम से इमाम और उनके अनुयायियों पर पैनी नज़र रखने लगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी अपने उद्देश्यों को व्यवहारिक बनाने के लिए नई शैली का आरंभ किया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है और ईश्वर ने चाहा तो इमाम द्वारा आरंभ की गई नई शैली की चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।